As much as you know. Vancha Kavadru was talking about the Jabadina Pavani Vaishnava. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garaj, that they go back to Bindi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. First off, our respectful basis, countless times, beloved Guru Pat Bhavan Nityananda Amish Bhaji Shmat, Sri Bhaktivedanta so much to our Rupanu Gurvark, all the assembled devotees. Very fortunate to be in Sri Vrindavanam under the guidance of Srila Gurudev's nearest and dearest Vaishnavas. Many people come to Vrindavan, tourists, tour and travels, they come and they go, even from Delhi coming in their SUVs, hotel, motel, few darshans, restaurant, chalo, you know, it's recreation. Very lucky to Srila Gurudev collected so many jivas and spread the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu in our line. So for those fortunate people, devotees of being able to catch even something of Srila Gurudev's teachings, then they try and take shelter of Sri Vrindavanam. There are many times Gurudev not so much promoting temples in the West. You know, but something nice if it's happening, but without sadhu, your temple was your temple. It also becomes a recreation place. You know. Anyhow, some or other, according to our Adhikar, even then come to sadhu, then who can follow the sadhu? Also not easy, because they're in the, what coattails they say, in the slipstream, Srila Gurudev. They're near and dear with Gurudev. Gurudev's moving like Narada Muni. How are you catching Narada Muni? How are you catching Guru Pad Padma? How are you staying with Vaishnavas? Yeah, when you do some seva, then maybe this is our connection, something. So seva is our thing. Saturn, what your Saturn's doing? 64 rounds of Nama Parad is also not helping so much. But some seva, some or other can melt the hearts of the Vaishnavas. I think one new devotee was asking me, he said, oh, how can I please Prabhuji? He's asking. I said, very easy, do kirtan. It's not so rocket science. Vaishnava is always happy if there's kirtan going on. No kirtan, then big problem. Then they have headache. But you're doing kirtan? Also, many times we see with Gurudev, he's chastising someone. I remember one time there was one devotee, he'd done something, he was in Hindi. Gurudev chastising him. He said, you chant your rants today? He said, no, Gurudev. He said, chant your rants. So he put his hand in his beat bag, started chanting. Immediately, Gurudev became, chanting Hare Krishna. You know? So there's only one main thing is chanting Hare Krishna. But then also, very important is Ekadashi. So Yudhisthira Maharaj also asking the Lord, after he'd heard the glories of Nirjala Ekadashi, he's also asking, what is the glories of this Yogini Ekadashi? So today is Yogini Ekadashi. So the Lord revealed this pastime, spoke this pastime. He said to Yudhisthira Maharaj, this pastime, will you understand the glories of Yogini Ekadashi. So he mentioned the pastime of Kuvera. He was he's the treasurer of the demigods. So he had a nice facility in the heavenly planets, lots of opulence. And he had one gardener. His gardener name is Hemamali. And he was like the gardener. So his job was keeping gardens. And also he would go to Manasarova and he would collect flowers for the puja. His Kuvaraji, he's doing this Shiva puja. So anyway, this duty, he'd go looking after the garden. But it happened that Hemamali, he had a very beautiful wife, Surupavati. Mentioned her eyes also, very big, nice lotus eyes. We see over time many devas in Vrindavan. They come to temple with lotus eyes, thin waist, very attractive and nice everything nice. Nice on top of nice, more nice. Oh, very distracting. So anyway, his wife was like this. So generally, Shastra is saying you have a beautiful wife is a big problem. How can you do bhajan with beautiful wife? Better you get ugly wife, then she can clean. But then, you know, very difficult. So he had very beautiful wife, and this is example. So anyway, he collected these flowers from Manasarovar, and he's returning. And he thinks, oh, I just go and see my wife. So he's very lusty. And then he became engaged with his wife, and then he forgot all about returning to Kuvera. Then Kuvera, he's doing his puja, and then this there's no flowers. So the flower, obviously, for your puja, you need flowers. So big ingredient missing. So he's saying, where's, you know, where's this Hemamali? Where's he gone? Find out. He sent one of his, he said, this dirty-hearted gardener. You find, go find him, find out what he's done, and come and report back to me. So one servant went and found out that he'd been enjoying with his wife. And so one Kuvera was reported back to Kuvera, and he explained that, he said, okay, you summon him now. He should come right now. He should come. So then Hemamali was very disturbed. Now he knew he'd done, he forgot. Just like we see, you have good intention to serve Hari Guru Vaishnav. Then Maya comes and you forget everything. Could be Facebook, could be movie, could be YouTube, could be anything. You think, oh, today I'll do good. Then gone, mind's gone, intelligence gone, or complete 180 going in a different direction. But then back to his senses, he's understanding, oh no, I did blunder. So he went back to Kuvera, and then Kuvera is saying, oh, you're a pain, you're a thorn in the side of the Vaishnavas. You're like an offense, you're like an embodiment of offense. You'll cause great distress. So I curse you, you'll get white leprosy. You become a leper, and you'll find no happiness in this world. And you'll have to become a leper. So you leave the heavenly planets, you go down to the lower planets, and there you'll suffer. So anyhow, he was down there, and he's suffering. He got this white leprosy. Sometimes you see white leprosy. Like in Puri also, like in Jagannath Puri, they have this elephant foot, you know, this swollen foot. You see some, especially in Puri, in the English we call it elephantitis, because the foot becomes like an elephant foot. So this is like reaction for stepping on Jagannath Mahaprasad. You know, little offenses, yeah. So everyone very careful in everywhere, but especially in Puri, because Jagannath Prasad is very, very special. So anyhow, this white leprosy also coming some. Save aparad, any serious aparad, then sometimes you see this white leprosy comes. And then showing this person done some fault. You know. So he got this white leprosy, he's suffering. But anyhow, he's doing some puja, still he's also remembering his previous seva. He's also doing some pujas. So then one day he was walking and he came across Markandeya Rishi. And Markandeya Rishi, he started offering prayers. He thought, I'm very sinful, I'm a leper. He didn't approach, but from a distance he played pranams and he offered some prayers. But then there's the nature of the sadhu, they very kind-hearted. He beckoned him forward and said, how did you get in this position? He said, he was honest. He said, I did this offense. I enjoyed, I was lusty. I disobeyed Kuvera. He cursed me to come here. But maybe by your mercy, you're more merciful than the Lord, or as merciful as the Lord is the Vaishnavas. So maybe you can help me. And he offered obeisances. And Markandeya Rishi said, yes, you've been very honest with me. Because you've been very honest, then I'll give you the benediction. You do this fasting on Yogini Ekadashi. There's one thing you should know, you be honest with the Vaishnavas. This is best, honesty is best policy. Gurudev also would sometimes say, Oh, don't think you can cheat Guru. You know, sometimes people think, we all know, sometimes we all hide something from the Vaishnavas, but we know they can see everything, but still we a little bit hide, sometimes a little dishonest, you know, even a white lie, you know, little, not complete truth. But if you can be fully truthful with the Vaishnavas, then it can help. Like Gurudev said, if you want my help, you have to come on my operating table. Yeah. If you want this surgery from Sri Guru, then there's some requirement from us. So main thing is to have open heart and give our and surrender to Guru and Vaishnavas. Then they can do their magic. So at least have to be honest. Then they can help. Otherwise you're hiding in the shadows, not coming in front of the Vaishnavas, staying in our caves, you know, with our smartphones. And this is like darkest ignorance. No, you come before the Vaishnavas, do some seva. Then naturally they'll help us. You know? So anyhow, he took, because he was honest, Markandeya Rishi helped him. And then he followed his fasting in the Ashada, this month, the dark moon night, Yogini Ekadashi. And he gained his, retained his like heavenly body. And then again, he could continue his life. So Yogini Ekadashi, this is just little glories. I'm sure Vaishnavas are more glories, but even the material thing you can get from, it can write the aparad and offenses to even to Vaishnavas.
Oma gyanantim randasya gyananjana shalakaya chakshur unmilitam vena tasmai shri gurave namaha gurave gaurachandraya radhikaya tadalaya krishnaya krishnavaktaya tadbaktaya namo namaha vandeham shri guru varam shri rupanuga pravaram rajrasrasikam cha narayanam tam prapannam shri guru charanam vande ramana prasthaya bhutale rupanuga bhaktidam cha kripamurti narayanam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadhadar Shivasadi Shri Gaurav Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare So first of all, I offer my respectful obeisances at the lotus feet of our spiritual masters Nitlai Shriman Bhaktivedan Shri Narayan Gosai Maharaj Shri Gurudev Nitlai Shriman Bhaktivedan Shri Vam Gosai Maharaj Shri Gurudev To entire Rupanagariya Guru Varga, to all the Vaishnavas, Vaishnavis, our guardians, and to Ekadashi Devi herself, whose appearance we're celebrating today. And today also happens to be the disappearance day of Sri Krishna Keshav Prabhu, the beloved disciple, Srila Prabhupada Saraswati Thakur. So just offer a few words of Pushpanjali on his lotus feet, then speak on Ekadashi Devi. So we hear that when he was only 11 years old, he came to Navadvip. And when he was only 11 years old, there he had darshan of Srila Prabhupada. Then he desired to give everything up and surrender to the lotus feet of Srila Prabhupada. So then Prabhupada, he gave him Harinam Diksha, although he was only 11 years old. And then his father also came looking for him. He was the youngest of 10 children. So his father came looking for him and he said, where is my son? And then he saw him there. So then his father was taken around Navadvip Mayapur. He was very happy with all the arrangements there, with how Harikatha was being spoken, Kirtan was being done. He was very happy there. And then he told his son, oh, now I see you're in very good hands. And then soon enough, he also desired to be initiated. But then his son told him that you'll have to give up all your bad habits. He said, surely. But do you promise to not do it again? He said, yes. And then immediately he sat down with those who are going to be initiated soon. He shaved his head and he sat down. Someone told Prabhupada that, oh, he's new. Just came like 2 days before him. Now he wants to be initiated by you. Prabhupada said, no harm. You can see the determination he has. And he initiated his father also. And then in this way, it is said that Krishna Keshav Prabhu, he used to assist one disciple of Prabhupada, he used to cook for Prabhupada. So in this way, once this disciple was a little sick, so Prabhupada was traveling from Mumbai to Calcutta. So then this disciple was thinking, how will I cook for Prabhupada? But as soon as they reached Krishna Keshav Prabhu, he cooked everything in like 10 minutes. And Prabhupada honored this Mahaprasad. He said, oh, how did you learn to cook so nicely? He said, just by looking here and there, he said. And then Prabhupada told him that I bless you, that anything you do, you'll always be successful in your endeavors. And then it is said in this way, he was always assisting in cooking for Srila Prabhupada. And then he remarked that whatever plate was given to Prabhupada, it almost returned in the same way. Prabhupada would barely honor anything, just like a tulsi leaf, nothing else. And only a little Mahaprasad, like we hear, like how our Guru Varga also. So in this way, it is said that when his father passed away, his brother gave him little money and he organized a big festival for all the Vaishnavas. So previously, if anyone would pass away, anyone would depart, the Matwasis, if someone would try bribing the Matwasis with nice prasad, they would not take. Because they would say that, oh, these people are very sinful. When they leave their bodies, if we honor what is taken in their glorification, then their sins might come to us. But when his father passed away and a big festival was organized, everyone came. All the disciples of Prabhupada, grand disciples of Prabhupada, all came and honored this festival. Because they said, just as Mahaprabhu said, anyone who takes part in this Haridas Thakur's festival, they'll be blessed. Similarly, they also said that he's such a near and dear disciple of Prabhupada, his father. So in this way, Krishna Kesava Prabhu, he started staying with many disciples of Srila Prabhupada. And then gradually, he started staying with Bhaktidaip Madhava Goswami Maharaj. So it is said that he would go preaching everywhere. And then it is said he even established one temple in Sarabhog, Assam. So there it is said that one brahmachari actually he killed a devotee who had given this land in charity. So they didn't want any disciples of Prabhupada to come and preach there. But anyhow, since his entire family were devotees, they changed the entire village. And the entire village became favorable and conducive to their preaching. It is said that once some disciples they came to the temple, and when they heard one very senior Vaishnava saying, oh, I've stayed in the temple for so many years, but I've not achieved anything in my life. When they heard this, they became very discouraged and they left. But one stayed back and he asked Krishna Kesava Prabhu, why did he speak in such a way? Because Krishna Kesava Prabhu said, if anyone is wealthy, will he show his wealth to others? Obviously, he'll hide it. The Vaishnava has spoken this as very advanced, but he's hiding his bhajan in this way. You must try to reconcile. And this way, that person stayed back. And that person, who was he? He was Bhakti Vallabh Tirtha Maharaj. So he would say that it was only because of Krishna Kesava Prabhu that I stayed in the temple. Or else I would have also left with my friends on hearing this Vaishnava speak in such a way. So in this way, Krishna Kesava Prabhu was preaching everywhere, in all over Assam, all over India. Then once he went to invite the chief minister of Assam to come and speak, to come and attend the function there. So then the chief minister of Assam asked him, from where are you from? So he said, from Assam. Then he said, in Assam there are so many devotees. But why are you following Mahaprabhu Chaitanya, who's from Bengal? So then Krishna Kesava Prabhu said, then why did you go to the West to study? Then he said, oh, to gain a higher education. And then similarly in Navadvip also, we're gaining this highest education of Mahaprabhu. So if you have no problem going to the West, then why do you see any problem? Why do you see any problem in us going here to Navadvip and taking shelter there? And this way the person was so impressed, he attended the function that very day. And then also it is said that he invited so many people, they became part of the mission because of him, because of his preaching. And he never took sannyas his entire life. He had such nishtha in Prabhupada that he said, once I've given my heart to him, I cannot give my heart to anyone else, he said. Therefore, I'm not taking sannyas, he said. He said, how can I give my heart to anyone else? His whole life he never took. And then it is said that when any disciple of Prabhupada would depart from this world, he would take their beads and he would keep it with him. Because he'd say, my Guru Maharaj has chanted on these beads. So he would keep it with them. And if anyone else would lose their beads, he would give these beads to them, saying, you keep it. It is said that when Singhania had this Jagannath Puri temple built there, he gave one of these beads of Prabhupada to him, saying, Prabhupada chanted on this. This is like a token of our appreciation for your seva. And then it is said that when he departed from this world, he said he would always save money. And then he would save enough money, and then what would he do? He would invite all the Pandas from Jagannath Puri and he'd organize a big feast for them. He would invite all the devotees from everywhere and organize a big feast for them. And even when he departed, he was such a Nishkinchan Vaishnav, he only left a few books behind and two sets of clothes and just like a little money, like maybe 3 or 4 rupees. That's all he had with him. Nothing else he had. And that's how he departed from this world. So it is said that today is his Tiruvavtithi. It is said that once some disciples, some followers of Srila Gurudev, when they went and started asking him about this Ragmai Bhakti, Ragmai Upasana, he said, "Oh, I know from where you're getting all this knowledge from." He said, "Surely you must be listening from Sri Narayan Maharaj," he said. And he glorified Gurudev. He said, "Oh, he's like one of the few like grand disciples of Prabhupada who's speaking in such wonderful ways." So today is his Tiruvavtithi, and also today is Yogini Ekadashi. So the Vaishnavas have previously spoken and they've said, "Why Yogini?" Because Parvati Devi, she is this Yogini Devi. Why? Because we hear that Parvati Devi, when she was Sati previously, she didn't listen to Lord Shiva and she attended this fast sacrifice of her father, where she had to listen to her father criticizing her husband, and she had to give up her body. And then she didn't listen to Lord Shiva when she tried testing Ramchandra. She assumed the form of Sita. Again, she didn't listen. And then again, we hear that when Chitraketu Maharaj came, she cursed Chitraketu, saying, "Why are you speaking and why are you dishonoring my husband this way?" She cursed him. Then we also hear how this Lanka was built, and then she wanted this entire kingdom for herself, but then Ravan came and took everything away, and then she became Lankini. And Lord Shiva said, "Only when a monkey punches you, then you'll be relieved of this curse." So she was thinking what to do. So then when she was born as Parvati, as the daughter of Umadevi and Himalayas, so then Naradrishi, she asked Naradrishi that, "How can I avail myself of this Sadhu Sangha?" Because Lord Shiva is the greatest Vaishnava. So how can I have this Sadhu Sangha? Not to have him as my husband, but because we always speak Harikatha to each other. So how can I have this Sadhu Sangha? So Naradrishi said, "If you want to have such Sadhu Sangha in the form of Lord Shiva, then you must follow Ekadashi. You follow Ekadashi properly, then when you become a Yogini," what is the meaning of Yogini? Means Yogyukt. Means when your connection with your Ishtadev is one-pointed, unbroken, then when you follow Ekadashi in this way, you will have Sadhu Sangha in the form of Lord Shiva's association. So then, on Naradrishi's advice, Parvati Devi, she followed this Yogini Ekadashi. And then soon enough, what happened? She had Lord Shiva herself as a husband again, and then again she had this Sadhu Sangha. So therefore, this Yogini Ekadashi Devi is teaching us that the best fruit of following Ekadashi is to have Sadhu Sangha. And Parvati Devi herself is showing this by her own life. And therefore we see that even in our Gaudiya Vaishnava line, we have so many yoginis, pure devotees, sadhikas, not even sadhikas, like pure devotees who have appeared in their self-same female forms, which is very rare to see in Mahaprabhu's line. But still we see Hemlata Thakurani, Jhannava Thakurani, Gangamata Goswamini, Sita Thakurani, Malini Devi, Sachi Devi, all of them. This way, in this most auspicious occasion, we can only pray to Ekadashi Devi that by following this vrata properly, one-pointedly, we can have this Sadhu Sangha, just as Parvati Devi did. Vancha Kulpataru Vishya Kripasan Devcha Paditanam Bhavani Vyavishnali.
Om Agyanati Mirandasya Gyanangana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Vandeham Shri Guru Varam Shri Rupanu Gapravaram Rajarasarasikyam Chanarayanam Tang Prapannam Shri Guru Charanam Vande Ramana Prashtaya Bhutale Rupanu Gabhakti Dangcha Kripa Murti Narayanam Vancha Kalpatrubhyasta Kripa Sindhu Bhivaja Paditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadarha Shivasari Gaur Bhakta Vrindam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. First of all, I offer my Sastangan Ratpanam, Thousand of Times, Lotus with the Sri Paramaradadam Guru Parabadmam Vishnu Parasthotra Shishma, Bhakti Vedanta Narayan Gosai Maharaj Shila Gurudev. Second, I offer my Sastangan Ratpanam, thousands of times in the lotus feet of my Sri Rupanuga Gauriya Guru Varga. And therefore my Sastangan Vatpanams and to all the Simbud Vaishnavas and Vaishnavis. Today, by the causeless mercy of Sri Guru Pada Padma and the Vaishnavas, we are here in Sri Vrindavan Dham in high class Sadhu Sangha, observing all these auspicious tithis. And today is Yogini Ekadashi. Also, we heard the disappearance day of this Krishna Keshav Brahmachari. I remember in Puri in 2001 when we went there, then some devotees, they went for his darshan. And then they came back and they told me, oh, he told us one shloka. What was that shloka? Labdvasa durlama minam bahu sambhavante manusam artadam anittam apihadira turnam yateta na patet kalu mittu yavan nishasha vishaya kalu sarvatasyarin. And they said, I've heard this verse so many times, but when you hear it from a Vaishnava who is that old and they're on the verge of leaving their body, when they speak this verse, then it has so much deep impact and meaning. That in his last moments, he's saying, oh, I have wasted this human life. I have not done bhajan. If you have any time, utilize all your time in doing Krishna bhajan. Don't utilize it for anything else. So that when I heard that, then it left a deep impression in me. Oh, there's such a senior disciple of Prabhupada. In his last moment, he's speaking these words. Surely he must have done bhajan. He must have done so much guru seva, everything. But then yet in his humility, he is speaking like this. So this is the Vaishnava's mercy, their kripa. They don't give us money. They don't give us name, fame, position, all these things. The Vaishnavas only have one desire, is to give the jewels of their heart, that is the moods of our Guru Varga, their Harikatha. Therefore, it is said that conditioned souls, they said that Brahma Karna Parthava Pramar Vipra Lipsa, saying that these four dosha is inside all jivas. But Mahajanir Vyakyas Nahe Sabha Dosh. These faults are not found in the words of the Mahajans, not found in the words of our Guru Parbhadu, not found in the words of the Vaishnavas. So whatever they speak, whatever they say, you have to understand it to be absolute. It is perfect. There is no discrepancy in whatever they say. Anything they say, it should be accepted as face value. And we should take it into the heart. Because they are free from all these illusions, from all these things. We may, with our own sense perception, with our own small mind, understand so many things. But can we come to the correct conclusion? No. Therefore, the first limb of bhakti is Shravanam. Out of Navara bhakti, the first one is to hear, listen. Try to hear attentively from the lips of Guru Pada Padma. This Shravanakya bhakti. Then after you perform Shravanakya Bhakti, then Kirtanakya Bhakti. And after performing this Kirtan of these words that you have heard, then Smaran naturally will come. Kirtana Prabhave Smarana Hoibe Sekale Bhajana Nirjana Sambhav. Then your bhajan, your path of bhajan, this will start. The Vaishnavas, they have glorified so many things about Ekadashi. Especially now, who is Yogini? We say that Katyani Mahamaya Mahayogini Arishwari. Nanda Gopasutam Devi Patimme Kurute Nama. This Yogini, this is Bhagavan's special Shakti. And in Braj, Yogini is who? Everyone knows Purnamasi Devi is to be Yogini. She is the Yogini there. She is the protector and the one who is giving guidance to all Braj Basis. And she is, under her guidance, she is helping arrange all meetings. As Kunja Leela, Purnamasi Devi expands as Vrinda Devi. She is the yoga maya for the Kunja Leela. And for all of Braj, Purnamasi Devi is looking after. And this way, this yoga, one time they asked Gurudev, what is this yoga, what does it mean? And then Gurudev took his hand, he said, there is Bhagavan and there is the Jiva. And when they unite in Prem Seva, then it is called yoga. This is this meeting. So yoga guru helps us unite with the Lord, with Sri Krishna. So Purnamasi, she is always organizing all meetings for Krishna with the Braj Gopis, everything. All orchestrating all of Bhagavan's pastimes. This is taking place there. So we know, they said that Bhagavan has Ananta Shakti, unlimited Shaktis. But in reality, Bhagavan has one Shakti, that is his Swarup Shakti, that is his Ladini Shakti, Radhika. Radhika is the Parashakti, the Adi Shakti. But from Radhika, then so many, from the Swarup Shakti, so many of them potencies they manifest. Primarily, we know we have the we known as antaranga chatashta and the bahiranga shakti, and that antaranga shakti is also known as haladini shakti, it is known as para shakti, it is adi shakti, swarup shakti, it has so many, chit shakti, it has so many names. And we know the chatashta shakti is also famous as the jiva shakti, the jiva maya, the jiva potency. And then the bahiranga, the external potency, is known as maya. And then each of these shaktis, they have three functions, that is ladini, samvidini, sandini, existence, knowledge, and bliss, happiness. And they reflect, they manifest in different ways in these different shaktis. In the material world, we see that satta, sandini, it is real, but it is temporary. Everything has a beginning, has an end, a start and end. And everything is therefore born, maintained, and destroyed. And knowledge, it is all this lokik gyan, jad gyan, ordinary knowledge. And this is a function of the maya. Bhaktivinoda Thakur describes about this. He said that maya koroe gada. He said that someone who is taking this mundane knowledge, he becomes like a donkey. And then he is carrying this the weight of this knowledge everywhere, but he is like a donkey, carrying so much sugar, so many things, but he can never taste the sweetness. So this mundane knowledge, it is useless. Real knowledge is what? Vidya dadati vinayam. Someone who has real knowledge, he will become humble. Like a tree who has so many fruits, when the fruits are ripe and his branches are full, naturally the tree, the branches, they are coming down. He's like bowing down because of the weight of the fruit. So someone who has real fruit of knowledge, then he is always very humble. And jarananda, bliss is manifest in the material world as this ordinary mundane sense gratification, mundane happiness. Then we can see in the Brahma Jyoti, this Brahmananda, Brahma Gyan is manifest in that way. But in the spiritual world, haladini is there in the form of prema bhakti. And so the samvit is there, knowledge is based on relationships. Relationship with Bhagavan, sambandha gyan. And satta, it is not mishra satta, it is not mixed. It is Vishuddha Sattva, pure, unadulterated, pure goodness. So this yogini is one manifestation of the Antaranga Shakti. She is a manifestation of the Swarup Shakti, Radhika. And therefore, she is serving under the guidance, all the Shakti is serving under the guidance of Shaktiman. According to Krishna's desires, everything is taking place. Without Krishna's desire, Shakti will not work. But Krishna, when he is in Braj, he forgets his own Bhagavata. He forgets his own superior of his position. And then he himself desires to relish the prem of the Brajbasis. Therefore then Swarup Shakti, then Radhika, then she manifests the Dham, Giriraj, Govardhan, Yamuna, everything through her different Shaktis. Sandini, Baladev is again the Adhishthati, presiding deity of Sandini Shakti. But Sandini is still a Shakti. So Baladeva, he manifests all these things there. And this way, the Shakti is sometimes even showing, acting even contrary to Krishna. Yashoda Maya sometimes binding Krishna. But this is all happening according to Krishna's desire. Krishna says that when Brahma and others, the Vedas, they glorify me, this Vedastuti, this does not attract me. But when the Brajbasis, they chastise me, then this is like music to my ears. This is giving me happiness. So this Ekadashi Devi, she's also a manifestation of Bhagavan Swarup Shakti. She is direct manifestation. It's described, Vaishnava described that Krishna had manifested this in the Puranas, different descriptions. And we know that just like there are 26 Ekadashis, there are 26 Swarups of Ekadashi also. Two for each month. And then that is 12 months, 24, and one leap month, Purushottamas, there's two Ekadashis for there. That's making a total of 26 different Swarupas. So Ekadashi Devi is personified in. And they all each have their own specialities. So Yogini Ekadashi, as we've been hearing, then she will help the Jiva, she will help the Sadhak, then be united. First with Guru and Vaishnavas, in connection with them. Then slowly, slowly, with them with Mahaprabhu, and then directly with Radha and Krishna. This is Maya Shakti has two functions. One is that when you look towards Maya, then the avaranatmika shakti and the vikshaya atmaka shakti, they will cover you and throw you into this maya and make you suffer. But when the jiva becomes unmukh, looks towards Bhagavan, then that same maya shakti, the same sarup shakti becomes favorable. And then she bestows transcendental knowledge, jnana, knowledge of one's relationship with Bhagavan, and inspires the jiva then to make progress towards Bhagavan. And then very easily you can come out of this prison, this durga, this is sangsar. So this, then therefore for the Vaishnav, then Mahamaya, she becomes this yoga maya. She becomes this very helpful, this shakti. Then the jiva, she will be able to follow Ekadashi. You see, so many karmis, they don't follow Ekadashi. They have no faith. Why? They're covered by maya. And they are suffering in this sangsar. Therefore, they cannot follow Ekadashi. They'll do so many, they eat so many grains, everything on Ekadashi, they'll neglect Ekadashi. Even we just heard the other day, Vaishnava was saying, some acharyas even, they're saying, oh, why need to eat Ekadashi? Why are you neglecting Mahaprasad? Eat Mahaprasad and Ekadashi. But this is Bhagavan's rules. Bhagavan has described these things in scripture, then how we can go against Bhagavan's rules? Mahaprabhu himself has followed all these things. What to speak of that Nanda Baba and the Braj Basis, they are following Ekadashi, then who are we not to follow Ekadashi? If you read Bhagavatam, there's no mention of any vrats there. Only mention of vrat is Ekadashi vrat. Describe that in detail. How Ambarish Maharaj followed Ekadashi in detail. How Nanda Baba and the Braj Basis followed Ekadashi. Therefore, this Ekadashi vrat is said that by following Ekadashi vrat, you get the fruit of following all other vrats. There's no need to follow. It is the supreme vrat. Therefore, Mahaprabhu told Sachimata, he asked his mother only two things: chant Harinam and follow Ekadashi. He never requested anything else from her. And if we follow then Bhagavan's desire, we honor this Ekadashi. How? Shri Hare Vasara Hare Kirtana Vidhan. Kirtana Vidhan. Kirtana is prominent in Ekadashi. Nitya Arambila Prabhu Jaga Tera Pram. On this day, you observe Ekadashi through the process of Kirtan. This will make Ekadashi Devi happy. Then this yoga, this connection with Bhagavan, this meeting will become very, very quickly. You think that I'll do karma, jnana, karma yoga, jnana yoga, so many different angas of bhakti, yajna, tapasya, this thing, that thing. Na sadayati mam yogo, na sankyam dharma uddhava, na svadhyayas tapasyago yatha bhakti ramorjita. Etava eva lokesmin. He said that out of Pungsan Dharma Parasmita, Tan Nama Grahan Adibi. He said that starting when you perform bhakti, bhakti starts from where? From kirtan, from Nam. It must start from there. But in order to perform kirtan purely, we must first perform this shravan, hear from the Vaishnavas. Because why does shravan come first? Because the Vaishnavas, they are doing kirtan. And we are hearing their kirtan. Harikatha is actually a lingam of kirtan. So when the pure Vaishnavas, they speak Harikatha, they perform Shuddha Kirtan, then that mood, that desire to perform kirtan will also come in us. Therefore, they perform kirtan first, and then we hear that. Then we get the qualification to perform kirtan also. So therefore, Jiva Goswami said, in Kali Yuga, no anga of bhakti will give any fruit if it's not accompanied by kirtan. All angas of bhakti have to be accompanied by kirtan, otherwise you will not give fruit. So whether you are doing, you're cleaning, you're washing the pots, cleaning the floor, you're doing malas, whatever anga of bhakti you're doing, you must perform kirtan along with it, in your mind, at least, or verbally you must do, out loud. But kirtan must go on, then the fruit will give, it will give full fruit. Therefore, kirtaniya sadahari, this kirtan is always going on. And Ekadashi Devi, she engages us in this way. And then this yoga, this connection happens very, very quickly. Otherwise, janma koti sukritana labhyate. Millions and millions of births doing sukriti, this and that, this anga, that bhakti, this parikrama, this thing, that thing. Nothing will happen. Take shelter of the Vaishnavas, perform kirtan, follow Ekadashi under their guidance. Bas, this is everything. Then everything will come from that. Therefore, their Bhaktivinoda Thakur is described. Our Guru Varga, they are Saragrahi Vaishnavas. There are so many Kathas, there are so many Puranas, so many descriptions, this, that. But why do the Vaishnavas, they emphasize Kirtan, Ekadashi, Braj Bhakti? Because this is the essence. This is where the life-giving rasa that will Janma rasyato. How does the jiva get janma? When he receives this braj ras, he hears this braj katha, then the jiva will make progress. Then this meeting with Bhagavan will happen. Otherwise, therefore they're very merciful. Instead of letting the jiva do millions and millions of births of wandering here and there, this dham, that person, this they're hearing this, that, so many lives will go. But they give us this braj katha, they give us this ekadashi, this kirtan, their association. Then Gurudev said, in a few lives, very quickly, you can attain perfection. So this is actually supreme mercy. Like a swan takes the milk and throws out the water, the Vaishnavas, they have taken all the excessive teachings from all the Puranas, Vedas. The Vedas are like an ocean of knowledge. You cannot, what you will read and understand the Vedas, the Puranas, everything, so much is there. But they give us kirtans of Narottam Das Thakur, Bhaktivinoda Thakur, Guru Padapadma's teachings. They have consolidated, made it very, very, like an amla fruit in your hand. They've placed it in your hand, everything, all Vedic knowledge. Just simply you follow that. And then very easily you will attain everything. So as Ekadashi Devi today, we are praying that we'll always be able to sincerely give our full energy and attention to observing this Ekadashi Devi under the guidance of the Vaishnavas.
Om Ajnana Timirandhasya Gnanjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Vancha Kalpa Tarubhasya Kripa Sindhu Bhai Bacha Patitanam Pavanebho Vaishnavebho Namo Namaha Namaha Badanaya Krishna prema pradayate Krishnaya Krishna chaitanya namane gauratise namaha Jai rupa sanatan bhatta raghunat Sri jivi gopal bhatta das raghunat Echai gosai kari charana bandhan Javaite vighna nas abhishta puran Jaya Sri Krishna Chaitanya Dayal Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Sri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय गुरु परंपरा की जय अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय सपार्षद गौर हरि की जय गौर नित्यानंद प्रभु की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय भक्त विघ्न विनाशन करणी सिंह देव की जय भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय सर्व अभिष्ट प्रदाता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय ब्रजमंडल धाम की जय ब्रजवासी भक्तवृंद की जय ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्राणेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय ब्रजदेवीगण की जय समवेत गौर भक्तवृंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि
अभी हिंदी में बोलना है कि अंग्रेजी में बोलना है असुविधा तो नहीं बोलो तो ये लोग तो अंग्रेजी बोले हैं हिंदी बोलो ठीक है तो आज जोगिनी एकादशी है इसके पहले वाला एकादशी उसका नाम था पांडवा निर्जला एकादशी पांचों पांडव कुंती देवी के साथ विराजमान है उन लोगों ने बैस पराशर देवल अत्रि गौतम जाज्ञवल्क भरद्वाज बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के अनुसरण किया प्रार्थना किया कि जगत में जन्म लेना ही सब कुछ नहीं है। यदि आत्मज्ञान लाभ नहीं हुआ, शरीर में आसक्ति रही, चमड़ी और दवड़ी में मुँह में फंसे रहे, तो पशु भी तो रहते हैं। हाँ, आहार निद्रा भयमैथुरंच सामान्य मेतत पशु भी नराणाम धर्म हितेशम अधिक विशेष धर्मेन हीना पशु भी समान। यदि आहार निद्रा भयमैथुन तो सब में है, यदि मनुष्य शरीर धारण किया, कुछ यदि लाभ नहीं उठा पाया, आत्मज्ञान लाभ नहीं कर पाया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जीवन और मरण का ये स्रोत से हम निकल नहीं सकते। जन्म लेना है तो मृत्यु होगा, मृत्यु होगा तो जन्म होगा। अपने कर्म के अनुजाई कहाँ जाएंगे कोई अता पता नहीं है। कर्म खींच के ले जाएगा, कभी पानी के अंदर में, कभी हवा में, कभी वो रेगिस्तान में, कहाँ जन्म होगा कोई पता ही नहीं। कर्म अपना जैसा है, इसको मिटा नहीं सकता। तो उन लोगों ने ऋषि महर्षि से प्रश्न किया, पांचों पांडव पितृहीन शिशु है, ताऊ के पास है, तो ताऊ है जगत का ताऊ, वो तो अपने सपुत्रों में ये इतना आसक्त है, वो केवल आंखों से अंधे नहीं थे, स्नेह से भी अंधे है, मुँह से अंधे है और जन्म से भी अंधे है। तो वो इन लोगों देखना उनको पसंद नहीं है, इसके लिए जहर दे दी, आग लगा दी, कितनी कोशिश कर ली, किंतु जिनको राके सही मार न सके कोई। अब कुंती देवी प्रार्थना करती है ऋषि महर्षियों से, हमें तो इतना आत्मज्ञान नहीं, आत्मतत्व ज्ञान नहीं है, किंतु हमारे बालक लोग नष्ट नहीं हो जाए, इन लोगों को कुछ आत्मज्ञान मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े ऋषियों की, महर्षियों की सेवन किया, और तपस्विनी थी। हाँ, इसलिए सब ऋषि महर्षि मिलकर के एक ही निर्णय दिया कि यदि आपके बालक लोग एकादशी का व्रत करेंगे, ये 11 इंद्रियां भगवान ने दी है, 11 सी देवी उनके पास समर्पण कर दी जाए, तो उनके कृपा से ये आत्मतत्व ज्ञान लाभ करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था प्राप्त कर सकेंगे। नहीं तो कोई उपाय नहीं है, एकादशी का शरणागत होना पड़ेगा। एकादशी देवी भगवान के कृपा मूर्ति हैं, हाँ, भगवान कृपा करके जीवों के लिए अपने स्वरूप शक्ति के वृत्ति को, कृपा मूर्ति को प्रकट किया, सबको सबका कल्याण करने के लिए। जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का हुए। तो यदि भगवान का भजन करना है, भक्ति करना है, तो एकादशी देवी का शरणागत होना है। नहीं तो ये इंद्रियाँ इतना बलवान है, ये नहीं सुनता किसी की बात। ये घोड़े को लगाम देकर के खींच करके सारथी भले ही काबू कर सकता है, ये इंद्रियों को काबू नहीं कर सकता कोई। और इसके राजा मन बैठा हुआ है, वो तो सुनते ही नहीं है, वो तो ऐसे हॉर्स रेस घोड़ दौड़ चलता रहता है, किधर लेके खाई गड्ढे में गिरा देगा, सोचता नहीं है, इनका बर्बाद हो जाएगा नहीं सोचता है, दुखी होगा नहीं सोचता है। मन मन एवं मनुष्य नाम कारण बंधन मुक्षेत, ये मन ही मनुष्य के लिए बंधन का कारण का उपाय बनता है। कहाँ ले जाता है, चुपचाप सोए हुए हैं, ये मन सोता नहीं है, उनको दवाई दे दो, जहर दे दो, तभी नहीं सोता है वो। हाँ, अमृत दे दो तभी नहीं सोएगा वो, मस्त है, मस्त राम घूमता रहता है वो। बोले कहाँ घूमता है, बोले मस्त राम मस्ती में है और आग लगे सब बस्ती में, वो तो मस्त राम है। इससे मन को काबू नहीं कर सकता है, इंद्रियां यदि उनके नहीं सुने ना, जैसे प्रजा नहीं सुनता है, तो राजा क्या करेगा, तो ये राजा क्या करेगा, यदि इंद्रियां यदि वशीभूत हो गया तो। और इंद्रियों को वशीभूत करने के लिए 11 देवी एकादशी देवी की शरण लेना जरूरी है, नहीं तो इनको काबू कोई नहीं कर सकता। एकादशी देवी में सामर्थ्य है, भगवान ने दिया है, इंद्रियों को संभाल करके भगवत सेवा में समर्पण करो और आत्मज्ञान इनको दिलाओ और उसके रास्ता अपनाओ और शिक्षा दो। इससे महाराज अम्बरीश वो हस्तिनापुरी छोड़ के मथुरा आ जाते, दशमी के रात को, शाम को। और दृढ़ तंबू डाल देते जमुना के उस पर, वो क्यों, वहाँ दुर्वासा ऋषि आश्रम है, दत्तात्रेय पराशर और सप्तर्षि विराजमान है, इनके आश्रम में लेकर के मेरे को व्रत करना है। तो आज दशमी को सबको निमंत्रण देते, एकादशी को सारा दिन यज्ञ व्रत तप मंत्रपाठ और सब स्तुति सब करते। फिर क्या होता, द्वादशी को ब्राह्मण संतों को भोजन करा करके पारण करते। आपको पता है दुर्वासा ऋषि बिगड़ गए, अभिशाप दे दिया, जटा निकल करके अम्बरीश को मार डालो, क्योंकि उनने मेरे को बिना खिलाए पहले खा लिया। झूठन खिलाना कितना बड़ा पाप है, इससे सोच सकते हैं। उन्होंने कोई गलती नहीं की, पारण का टाइम जा रहा है, ऋषि से पूछा, दुर्वासा ऋषि स्नान करने गए आए ही नहीं, और क्या करे, बोले पानी पी के आचमन व्रत को खोल लो, पानी पीने से खाना नहीं होता, किंतु टाइम जा रहा है वो आ नहीं रहे। और जब वो पानी पी के आचमन करके पानी पी लिया, दुर्वासा ऋषि आ गए। अच्छा, निमंत्रण देखे ब्राह्मणों को, देवताओं को, ऋषियों को, और तू भोजन कर लिया और फिर बाद में मुझे झूठन खिलाएगा, तेरा झूठन खाने के लिए मैं आया, बस अपना जोटा उखाड़ करके फेंक दिया और कृत्य राक्षसी आक्रमण कर लिया महाराज अम्बरीश को जलाने के लिए। किंतु क्या कर सके, सुदर्शन चक्र संत चले सिरे चक्र धराई, जिनके व्रत किया तप किया उनके चक्र सुदर्शन विराजमान होकर के कृत्य को तो मार डाला और दुर्भाषा के पीछे लग गए। वो मारे मारे फिरते फिरते एक साल घूमते रहे, कहीं किसी ने शरण नहीं दी। भगवान विष्णु के चक्र है तो उनके पास भी गए, भगवान क्या कहते हैं, साधव हृदय मय्यम साधु नाम हृदयंत हम बदनते न जानती न हम तेब्य नम बना गोपी, साधु मेरा हृदय है, मैं साधु का हृदय हूँ, साधु के बिना मैं नहीं जानता और साधु भी मेरे बिना नहीं जानता। तुमने साधु के पास अपराध किया, गलती किया, जाओ, पर तू गृहस्थी है, तो गृहस्थी है तो क्या है, भक्त को भक्त गृहस्थी में भी होता है, ब्रह्मचारी भी हो सकता है, सन्यासी भी हो सकता है, वानप्रस्थ भी हो सकता है, भक्त के लिए कोई विचार नहीं होता। भक्त कहाँ भक्ति करते हैं, जहाँ भक्ति करते हैं वहीं भक्त है। अब आए अम्बरीश के पास, अम्बरीश महाराज तो खड़े हैं, स्तव स्तुति कर रहे हैं सुदर्शन के लिए, सुदर्शन चक्र उनके स्तुति से लौट के गए। अब दुर्वासा ऋषि उनसे हाथ जोड़ करके माफी मांगने लग गए, किंतु बोले हमारे गलती से आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा। अम्बरीश महाराज स्वयं कह रहे हैं, और उनको बैठा करके भोजन कराया, चरण धोया, शांत किया। दुर्वासा ऋषि कहते आज मैं जान गया हरि और हरि भक्तों की महिमा। तो अब ऋषियों ने बोल दिया कुंती दी को, एकादशी व्रत कराओ बच्चों से, तो बच्चे कैसे होंगे, होनहार, बलवान, वीरवान, और बलवान वीरवान के होते हैं चिकने पाक, शुरू से जो अच्छा करेंगे फल भी अच्छा निकलेगा, सुखी सुखी रहेंगे, सबको सुखी कर सकते हैं। तो कुंती देवी ने बोल दिया पांचों भाई को बुला करके, भाई ये जेठ के महीना है और बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी से व्रत शुरू करना है। सब बोले भाई व्रत तो सब करेंगे, चारों राजी हो गया। अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव, भीम कहते हैं ये मेरे बस की नहीं है, नहीं है, मेरे पेट में अग्निदेवता साक्षात विराजमान है, मैं सारे दुनिया को पचे जाऊं तभी मेरा शांति नहीं है, मैं तो कभी नहीं व्रत कर सकता, ना हमारे बस की है। तब कुंती देवी देखते हैं ये तो सुनेगा नहीं है, और इनको हर मिनट में सबका खाना खा लेता है, तब भी उनका भूख नहीं मिटती है, और जितना दे दो इतना ही कम है, अब क्या करें। कुंती देवी उपाय न कुछ कर सके, फिर उन्होंने सोचा हमारे तो एक परम मित्र है, अच्छा उन्हें बुलाऊं। तो उन्होंने मनीमन स्मरण करने लगे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, सबके क्लेश को नाश करने वाले हे कृष्णाय वासुदेवाय, हे वासुदेव कृष्ण आप आ जाओ, आप ही इन्हें समझाओ, ये नहीं मानता, एकादशी करेगा नहीं और जीवन बर्बाद कर देगा, क्योंकि एकादशी का अन्न खाए तो सारा दुनिया का पाप और कलेश और झंझट सब इनको पर, और इन्हीं को ही ज़्यादा मारने के लिए तैयार, कभी जहर इनको ही दे रहे हैं, कभी इनके पीछे सब पड़े हुए हैं, हैं। तो अब क्या करें, कृष्ण आया, बुआ जी ने स्मरण की, बुआ तो नहीं, वो तो भक्त के अधीन है, कहीं भी स्मरण करे एक सबसे खड़े रहते हैं, देखो बैठते नहीं हैं, ओर से जाएंगे ना राम दरबार में, राम जी बैठे हैं, और साउथ इंडिया में जाएंगे तिरुपति से लेकर श्रीरंगम सब सोए हुए हैं, उनको सोने से फुर्सत नहीं, हमारे कन्हैया सोते नहीं हैं, वो खड़े रहते हैं, कब कौन बुलाएगा, जल्दी भागे चलो, हैं वो उनके खबर आने के पहले ही चल देते हैं। तो पहुँच गए, अरे बुआ जी कैसे याद किया, अरे याद तो इसलिए किया बेटा, ये ऋषियों ने महर्षियों ने आदेश दिया, एक व्रत करो, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, एक व्रत कर लो, तो कौन सा, एकादशी, और सब व्रत एक एक इंद्रियों को भले ही कुछ खुश करे, ग्यारह इंद्रियों को कोई नहीं बस कर सकता, ग्यारहसी देवी एकादशी देवी नाम ही है एकादशी और ग्यारहसी, वही इंद्रियों को बस कर सकते हैं और स्वस्थ बना सकते हैं और सुस्त शिक्षा दे सकती है, कंट्रोल कर सकती है, और कोई नहीं, ये नहीं करेगा, ये बोलता है मैं नहीं रह सकता, कृष्ण भैया मैं खुद एकादशी करता हूँ, नंद बाबा ने सिखाया बचपन से, हैं मैं ग्वालिया गायचरण जाता था, सुबह शाम को आता, बाबा बोले आज एकादशी है, चलो अंबिकावन चलो सरस्वती कुंड, रात भर यज्ञ होगा, कभी बाबा को सामने ग्रास कर लिया, कभी बाबा को कुबेर के वरुण के दूतों ने पकड़ के ले चला गया, हैं किंतु सब जगह जयी हुई, एकादशी बहुत भारी शक्ति है, तो करो भीम, वो बोले कैसे करूँ, मेरे पेट में आग लगी हुई है, इसका आग को बुझाओ पहले, फिर मैं करूँगा, कैसे, बोले ठीक है, सुबह से बैठ गए सबको, किसको, पांचों भाई माता और जितने ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि तपस्वी राजर्षि हैं, जितने अगणित भक्त हैं, सब बैठ गए, कृष्ण अब ब्रज की कथा सुनाने लग गए, ब्रज का रस ऐसे है, सुखदेव गोस्वामी ने सात दिन परीक्षित महाराज को सुना करके भूख प्यास से ऊपर कर दिया, नींद चली गई और मुक्त कर दी, ब्रह्म ज्ञानी ने ब्रह्म लीन कर दी, आ नित्य लीला भगवान के धाम तक पहुँचा के तब गए, बोले तुमको वैकुंठ ले जाने के लिए किसी को आने की जरूरत, मैं खुद पहुँचाऊँगा ना, इतना ताकत है भगवत रस में, भगवत कथा में, तो भगवान ने स्वयं पांचों पांडव और ऋषियों के बीच में बस पांडव निर्जला एकादशी और कथा सुनाने लग गए, सुबह गया दोपहर हो गया शाम हो गया रात हो गया, रात बीत गई, भीम को सुबह पूछा भूख लगी है, बोले नहीं, क्यों, भूख मन में है, मन चाहता है खाना तो तन चाहता है खाना, और मन यदि नहीं चाहता है, घर में कलेश हो गया, जूता पिट दिया, गाली गलौज कर दिया, थाली परोस दिया, कोई नहीं खाएगा, एक कुत्ता को भी मार दो ना डंडा पिटते रहो और दे दो टुकड़ा, वो भी नहीं खाएगा, तो मानव मन कोई नहीं सहन कर सकता है, तो नहीं तो छप्पन भोग कृष्ण के लिए बनाया दुर्योधन ने, बोले मित्र आओ चलो भोजन करेंगे, बोले मित्र तुम्हारा प्रेम हमारे में नहीं है, जहाँ प्रेम नहीं है तहाँ खाना रुचता नहीं है, अंदर नहीं जाता है, और जिस काम के लिए आया वो काम भी तो तुमने पूरा नहीं करने दिया, न माना तुमने, हैं और चलो भूख भी हो जाए तभी कुछ खाई जाए, और भूख भी नहीं है, तो आज ऐसा रसमयी कथा सुनाया, कौन सा कथा, कैसे मैं जन्म लिया, कोई कहता है वसुदेव के घर में हैं, और कोई कहता है नंदो के घर में, किंतु नंदो के घर में जन्म लेने के लिए मैं कितना तपस्या की हैं, वो नारायण स्वयं जाकर के वसुदेव के घर में जन्म ले ली, चतुर्भुज उनके मुकुट उनके वस्त्र सब कुछ देखे, भय प्रकट कृपाला हैं दीन दयाला, कौशल्य हितकारी नहीं देवु के हितकारी जेल में, किंतु जन्म हुआ कहाँ, नंद गोकुल में, और वसुदेव लेके जा रहे हैं, और जाते जाते हरिहर ओ नारायण और स्वयं कृष्ण दोनों मिलके एक हो गया, उनको ये तो दिखे नहीं, रात के अंधेरे में क्या दिखे, और उन्हें तो दिखे ये ही नारायण, चतुर्भुज वाले अब द्विभुज हो गए, किंतु उनने क्या किया, उठा क्या लिया, ओ उनके एक लड़की उठा ली, क्योंकि जहाँ भगवान होंगे उन्हें जोगमाया हाँ अनुजा वो तो रहेंगी ही रहेंगी, उनको लेके आए गए। अब भगवान ने अपने बाल लीला पूरा सुनाने लग गए, बोले देख मैं 10 साल 6 महीना ब्रज में रहा, मैं ब्रजवासियों के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता हैं, और ब्रज के जो प्रेम है ये प्रेम के गंध भी किसी को मिल जाए तो उनका जीवन सार्थक हो जाए। उन्होंने ब्रज की एक एक कथा एक एक भक्तों की कैसे सीधाम सुदाम दाम्बो सुदाम श्रो कृष्ण लवंग सुभद्र भद्रसेन अर्जुन किंकिनी पिपली लाखों लाखों सखा कितने दास रत्तक पत्रक चित्रक भद्रक हैं और कितने सखियाँ मंजरियाँ और माताएँ घर घर में 3 बजे उठ कर के 4 दीवारी टपक करके उछल कूद करके जा करके उनके घर में हैं कहाँ मिठाई है कहाँ मक्खन है सब लेना खाना हैं। अयोध्या को पकड़ लिया खा ले हमें बैठ जाओ खा लो, क्यों खाऊं हमारे घर के में कमी है तो क्यों चोरी कर रहा है, बोले चोर तो तुम हो छिपा करके तुमने रख ली हैं, ये चोर के पाप से तुम मरोगे इससे मैं सबको बांट देता हूँ, तुम तो बांटोगे नहीं कंजूस है और चोरी का पाप तुम्हें लगेगा। अरे भगवान ने सृष्टि रचाई सबके लिए और तुम छिपा करके बना कर लड्डू बना कर छिपा दिया, राबड़ी बना कर छिपा दिया, मक्खन बना कर छिपा दिया, ये गलत काम ब्रज में रह के करते हो हैं, तिजोरी किस लिए, सबको खोल खाड़ करके और सब ले करके खुद खाया खिला दिया, बंदर को बांट दिया और कौओं को दे दिया, सबको बांट दिया और उनको भी दे दिया। सोए हुए है ना बुढ़िया पहरा दे रही है गेट के किनारे, दांत एक भी नहीं है, मुँह खोल कर सांस ले रही है, बुढ़िया के मुँह उठ के इतना बड़ा लड्डू दे दी और मक्खन पोत दिया और क्या कहते हैं देख ये बुढ़िया रात भर मक्खन खाती है और लड्डू खाती है, तुम्हारे घर में चोरी यही करती है। बुढ़िया तो होश हवास नहीं रही, बहू बेटी घर में उठे तो कलेश शुरू हो गया, ये बुढ़िया रोज़ खा जाती है हैं हाँ, बोले घर बिगाड़े बूढ़ी और पेट बिगाड़े मूढ़ी हैं, तो बूढ़ी घर में रहेगी तो घर को बिगाड़ देगी, तो ये बुढ़िया अनर्थ नहीं, क्यों तो मेरी चिंता तो करती नहीं, ध्यान करती नहीं, ध्यान करती है दरवाजे में बैठे बैठे पहारा देती है, हमारे घर की रक्षा हुए, गेट कीपर बन गई, चिरकाल रहेगी हैं यहाँ ही रहेगी। तो बोले तेरे को भगवान का नाम और भगवान का ध्यान नहीं होता, बाबरी बूढ़ी डोकरी बस कैसे न कैसे सबके चित्त को चोरी करना है। इसे कहा ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांग नानांच दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्र गोन्नम पुरुषम नमामि। ये बटर थीप नहीं है केवल मक्खन चोर नहीं है, सबके हृदय को भी चोरी करने वाला, पापों को चोरी करने वाला, तापों को चोरी करने वाला, अनर्थों को चोरी करने वाला, सबके हृदय को निर्मल करने वाला और प्रसन्नता सदा सुखी करने वाले। अब कृष्ण ने खुद अपनी कथा ब्रज कथा सुनाया, वो भीम कहते वाह ये कथा में क्या ताकत है भाई, तुमने क्या अमृत पिला दिया, मुझे पता ही नहीं दिन कब गया रात कब गया, बस निर्जल एकादशी हो गया, किंतु रस पान किया ये जड़ रस नहीं, वो अप्राकृत रस पान किया। किसने पान कराया, स्वयं भगवान कृष्ण ने ब्रज रस पान कराया, किसी को दिया, खुद ने किसी को नहीं दिया, सुखदेव गोस्वामी को भेज दिया और साधु संतों को भेज दिया, सोनक ऋषि को एक पास सुध गोस्वामी को भेज दिया, नारद जी को भेज दिया सुखदेव वैष्णदेव के पास, किंतु यहाँ भगवान स्वयं सुना रहे। और भीम पांचों पांडव ने क्या किया, प्रभु आपकी बार अंत में जन्म हुआ, आपकी कृपा करो ब्रज में जन्म हुए और ब्रज वास करूँ और ब्रज कथा सुनूँ और ब्रज की सेवा करूँ, ब्रज रज में अपना जीवन बिताऊँ। भगवान बोले ठीक है होगा, किंतु अब ये जन्म तो बीतने दो, किंतु वो लोग अब नहीं चाहते हैं कृष्ण को छोड़ना। अब क्या हुआ, उन लोगों ने कहाँ जन्म लिया, श्यामकुंड के किनारे पांचों पांडवों का जन्मस्थान है, कैसे पेड़ वृक्ष होकर के पैर रहेगा तो भग जाऊंगा, इससे ऐसे जन्म दो कि पैर ही नहीं रहे, एकदम पक्का एक जगह में स्थिर हो जाऊं, जैसे नलकुबेर कुबेर के पुत्रों को नारद ऋषि ने भेज दिया ब्रज में, दो अर्जुन के पेड़ बना करके जमल अर्जुन चिरकाल यहीं रहे और कृष्ण की कृपा भी पाए, उद्धार भी किया। ऐसे पांचों पांडवों ने कहाँ जन्म लिया? श्यामकुंड के किनारे। जब दास गोस्वामी बना रहे हैं श्यामकुंड को, बोले राधा कुंड को सुंदर बनाया, श्यामकुंड को भी बनाऊंगा चोकर। जब काटने गए पेड़ों को, ओ देखा हाँ रोने की आवाज़ आ रही है। अब ये थोड़ा विश्राम करने गए तो क्या देखा? पांच पांडव हाथ जोड़ रहे हैं, हमें मत काटो, हम यहीं रह करके तपस्या कर रहे हैं, ब्रज की लीला दर्शन कर रहे हैं और ब्रज की कथा सुन रहे हैं और संतों के अहेतु कृपा हो रही है, अब हमें मत मारो। हैं इतने में दास गोस्वामी ने नहीं काटा, वो टेढ़ा के टेढ़ा श्यामकुंड रह गया, राधाकुंड चकुर हो गया, किंतु श्यामकुंड ऐसे ही रह गया। बाद में धीरे 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 पांचों पांडव उद्धार हो गया, अब तो लास्ट एक था वो भी चला गया। तो भगवत कृपा प्राप्त करना है तो भगवत रस में सराबोर होना है, तभी जल रस मिटेगा, तृप्ति हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगा। जब तक भगवत रस पान किया नहीं तब तक जल इच्छाएं कभी मिटेगी नहीं। तो पिछले एकादशी निर्जला एकादशी था, इसलिए आज भी लोग कहते हैं भाई बड़ी एकादशी हमें भी करना है, तो लोग जलदान करते हैं, सुरहाई बांटते हैं, कोई आम देते हैं, कोई पंखा देते हैं, कोई तरमुज खरमुज देते हैं, हैं तो ये कोई निर्जला एकादशी, कोई चीनी डाल करके पानी पिलाते हैं, किंतु ब्रज कथा ब्रज रस तो पान करने को जानते नहीं मानते नहीं तो मिले कहाँ से। चलो अभी आया योगिनी एकादशी, यह 26 एकादशी है, सबका नाम अलग है, सबका शक्ति अलग है, और उसमें सब ये नहीं कि आप वो पढ़ लिया जो एकादशी का महत्तम इसमें इतना ही समाहित है, वो तो केवल कर्मियों को आगे कुछ बढ़ाने के लिए कुछ उनको लोभ लालच देना पड़ता है, भाई ये करेगा तो ये होगा, ये करेगा तो पुत्र एकादशी तो पुत्र मिलेगा, तुम ये एकादशी करोगे तो तुम्हें धन मिलेगा, तुम्हें करोगे तो रोग चला जाएगा, तो एकादशी का एक एक बहाना बना करके एक एक लालच दे रखा है, किंतु ये मूल चीज़ नहीं है। अब क्या हुआ, ये जो योगिनी एकादशी है, पार्वती देवी पहले जन्म में सती थी किंतु शिव जी के निकटस्थ, कितना कथा सुनती, किंतु जब रामचंद्र वन में गए वनवास में, सीता को रावण ले गए, राम लक्ष्मण सड़क में रो रहे हैं और ऐसे बाबरे पागल की तरह रो रहे हैं, रामचंद्र के आंसू कोई बंधन नहीं कर सकते, लक्ष्मण बड़े दुखी हैं। उस समय शिव ठाकुर सती को लेकर के आकाश मार्ग में आए, आकर के राम की परिक्रमा की प्रणाम किया। शिव जी बोल रहे पार्वती सती कहती है ये किसकी परिक्रमा कर रहे हैं, ये दशरथी राम ये मानव है कि कौन है, यदि भगवान होते तो सीता को चोरी करके ले, मैं जानती हूँ मैं देख रही हूँ, ये नहीं जानते हैं। तो ये यदि रो रहे हैं अपने पत्नी के लिए कैसे भगवान हो सकता है, हाँ शिव जी कहते हैं देखो प्रभु क्या लीला कर रहे हैं ये समझना बड़ा कठिन है। बोले ठीक है आप जाओ मैं देख लूँगी, शिव जी तो चले गए। अब सती ने क्या किया, सीता का रूप बना ली, बना करके राम जंगल में जा रहे हैं, वो सामने खड़ी हो गई पेड़ काड़ में सीता का रूप लेके। जब ये देखा रामचंद्र जी बोले माता आप अकेली कैसे हैं, हमारे शिव ठाकुर कहाँ हैं, आप अकेली कैसे जंगल में अकेली खड़ी है। ये समझ गए ये राम तो साधारण राम नहीं है, ये तो दशरथी राम नहीं है, ओहो मैंने तो बड़ा गलती कर दी, और रूप बना लिया सीता का और उन्होंने प्रणाम भी किया। अब जब लौट के आई कैलाश में, देखा शिव जी ध्यानस्थ हुए और आसन बाएं तरफ नहीं है सामने रख दिया, क्योंकि माता का रूप बना लिया, सीता माता का रूप बनाया, अब तो स्वीकार करना भूल गए, अब तो दुखी हो गई। अब जब ध्यान भी टूटा तो समाधि से भी अब उठे तो अब वो व्यवहार रहा नहीं, अब चली गई पिताजी के यज्ञ में दक्ष यज्ञ में, वहाँ जाकर के दक्ष तो पहले से ही उतावला है, बहुत निंदा शिव निंदा करने लग गए, सहन नहीं कर पाई, अपने अग्नि में अपना शरीर को छोड़ दिया। बोले ये पिता ने शरीर दिया, ये शरीर मैं आज दे तुम्हारे लिए छोड़ देती हूँ, छोड़ दिया। अब हिमालय के कन्या पार्वती होकर जन्म ली, बड़े दुखी हैं। नारद ऋषि मिले, नारद ऋषि ने उनको समझाया, देख जीवन में हैं योग का साधना कर, हैं महाजोगी हैं शिव ठाकुर हैं, शिव ये दो अक्षर मंगलमय हैं, जहाँ शिव शिव नाम कोई करेगा तो सब अमंगल जाएगा मंगल होगा। ओ शिव जी की आराधना कर, देवता लोग आएंगे तेरे को बहकाने के लिए, कोई और आएगा किंतु सुनना नहीं भूलना नहीं, शिव ठाकुर के चरणों में ही अपने को समर्पण करना। तो नारद जी के बातों से वो शिव जी की आराधना करने लगी, किंतु शिव जी तो समाधिस्थ है। शिव जी ने पार्वती सती जाने के बाद बहुत कथा है वो समाधिस्थ हुए और पृथ्वी अंधेरा हो गया, मतलब तमगुण से युक्त हो गए, कोई तमगुण से मुक्त करने वाला रहा नहीं है। स्वयं भगवान विष्णु देवता लोग आए और व्रत उनसे समाधि से समाधि भग्न करने के लिए कामदेव स्वयं आए, किंतु वो भी जल गया, मर गया। किंतु भगवान ने कहा एकमात्र हरिकीर्तन से ही शिव जी अपना समाधि से बाहर आ सकते हैं, और तो कोई उपाय नहीं। इससे अभी सुना एतावाने वा लोकस्मिन पुंसांग धर्म परस्मित भक्ति योग भगवती तन्नाम ग्रहणा देवी, एकमात्र भगवान के नाम कीर्तन के अलावा और कोई हमारे लिए संपूर्ण रूप से कल्याणकारी नहीं है। सब देवता मिलकर के भगवान विष्णु स्वयं अपना नाम का अपना कीर्तन करने लग गए। शिव जी का समाधि टूटा कब, शिवरात्रि को, इसके पहले मुनिमवस्या आता है तो शिवरात्रि को शिव जी समाधि टूटे तो हिमालय की कन्या पार्वती को ले आए। देवता लोग सब मिलकर के उनसे प्रार्थना किया इनको स्वीकार करो, क्योंकि यदि स्वीकार नहीं किया फिर समाधि में चले जाएंगे, फिर हरिकथा कीर्तन नहीं करेंगे, संसार का उद्धार नहीं करेंगे। तो पार्वती जी उनके शरण में आई तो उन्होंने स्वीकार किया भगवान सबके अनुरोध से। जब से उन्होंने हरिकथा कीर्तन दोबारा शुरू कर दी, अब पार्वती जी उनसे प्रार्थना करने लगी, क्योंकि इसके पहले चित्रकेतु महाराज भी आए थे। चित्रकेतु महाराज ने शिव जी को बोले ये हरिकथा करने का तरीका है क्या, बैठे हैं नंगे धड़ंगे और गोदी में बैठा लिया अपने पत्नी को हैं। उस समय भी सती जी थी, सती जी ने अभिशाप दे दिया था, तू असुर हो जा, राक्षस हो जा, जरा पतन हो जा तेरा, कहाँ मैं हरिकथा सुन रही हूँ, हरिकथा कीर्तन कर रहे हैं, तू बोल रहा है कि मैं गोदी में अपने पत्नी को लेकर कथा सुना रहे हैं, तेरे को घोष नहीं शिव ठाकुर कौन है, ये शरीरधारी है कि ये शरीर से अलग है, क्या क्या बोल रहा है। तो उनको तो अभिशाप दे दी। पार्वती जी कहती है ऐसे कभी अभिमान मेरे को हुए नहीं, किसी को अभिशाप दूँ नहीं और किसी पर नाराज हो नहीं जाऊँ, आपके प्रति अवज्ञा करूँ नहीं, क्योंकि अभिमान सुरापान गौरवम शुद्धरौरवम प्रतिष्ठा सुकरिविष्ठा तयम तक्ता हरिम भजन, हरि भजन करना है तो तीन चीज़ों से बचना है, अभिमान नहीं आना है, दारू पीने से होश नहीं रहता है, अभिमानी व्यक्तियों का भी होश नहीं रहता है, और गौरवम शुद्धरौरवम, यदि गौरव आ गया, नाम प्रतिष्ठा पूजा आने लग गया तो हम नरक में गए हैं। उस समय स्वर ऊँचा करके माला पहनते हैं, तिलक करवाते हैं, पगड़ी बनवाते हैं, लोग गुणगान करते हैं तो बहुत खुलफुले समाते हैं, ये नरक का रास्ता। रावण का क्या हुआ, हिरण्यकशिपु को क्या हुआ, ओ बड़े बड़े कहाँ गए सब रथी अतिरथी महारथी। इससे बोलते हैं प्रतिष्ठा सुकरिविष्ठा, सुअर के टट्टी कोई नहीं मलता, भले गोबर मल ले किंतु प्रतिष्ठा आने लग गया ना, जिसने प्रतिष्ठा नहीं दी हाँ मारो उसको, जेल में ढुकाओ। हाँ एक देवी आई थी हमारे देश में, बोलते हमारे पैर जिसने नहीं छिया उसको तुरंत हटाओ। तो पार्वती देवी कहती है हमें ऐसा नहीं होने देना, हे शिव ठाकुर जोगी महाराज जोगीराज, हमें जोगी नहीं बनाओ, अर्थात भगवान के साथ जुग जुग तो कर दो। तब शिव ठाकुर ने बोला, सहस्र नाम नाम पुण्य नाम तिरावृत्त तुजत फलम एकावृत्त तु कृष्णस्य नाम ही क्यों प्रजच्छति। देख, हजार विष्णु नाम करेगी ना, तू रोज विष्णु सहस्रनाम पाठ करती है, उससे एक राम नाम करेगी बराबर फल होगा, और तीन बार राम नाम करने से जो फल होगा, एक कृष्ण नाम करने से वो बराबर फल होगा। तो कहते अब तक क्यों नहीं बोला? बोले अब तक तूने बोला नहीं कि मेरे को जोगिनी अर्थात भगवान से जोग जोग तो कर दो। दीक्षा तो तभी मिलते हैं जब कोई रोएगा प्रार्थना करेगा, तो तूने तो आज तक पूछा नहीं। हाँ, धर्मपत्नी बन गई, कितना बड़ा घमंड हो गया, अभिमानी हो गया, हम तो आज राज लूट लिया। हाँ, धर्मपत्नी का मतलब क्या है? धर्म के साझेदार है, अब वो बोले आज आपने स्वीकार किया कि नहीं? बोले नहीं, आज तुमको मैंने भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया, अब उनकी जिम्मेदारी हो गई। तो इसलिए किससे बोला? पार्वती देवी ने एकादशी किया शिव ठाकुर के साथ। अब जब जोगिनी एकादशी आई, एकादशी केवल पारण का इतना सा टाइम था, तो उन्होंने बोला मैं जब तक विष्णु सहस्रनाम पाठ नहीं करूँगी तो कैसे व्रत खोलूँगी। तब उन्होंने बोला था सहस्र नाम नाम पुण्य नाम तिरावृत्तु तुजत फलम एकावृत्तु तो कृष्ण से नाम क्यों प्रज, एक बार कृष्ण कृष्ण बोल दे बस हो गया, अब पारण कर लो जाओ, इतना जरूरत नहीं है। तब पार्वती देवी अपना जोगिनी नाम प्राप्त किया, अर्थात भगवान के साथ जोग युक्त हुए, जोगीराज शिव ठाकुर हैं। ये देवसभा में बड़ा तहलका मच गया, शिव ठाकुर ने देवी को समर्पण कर दिया। बोलते मैं खुद समर्पित हूँ, मैं खुद भगवान के भगवान का ध्यान करता हूँ, भगवान का जप करता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, भगवान के नाम से वाराणसी में बैठ कर के राम नाम देके सबके उद्धार करते हैं, मरे हुए मुर्दे ले आते हैं ना, उनको भी राम नाम सुना देते हैं। वो तारक ब्रह्म नाम है, और पारक ब्रह्म नाम ब्रज में गोपेश्वर महादेव कृष्ण नाम का दीक्षा देते हैं। कृष्ण कृष्ण बोलो, फिर क्या बोलते हैं? नहीं, इससे भी काम पूरा नहीं हुआ, राधे राधे बोलो तो तुम्हारा कल्याण होगा। कृष्ण कृष्ण बोलने से कुछ नहीं मिलेगा, धन संपत्ति औषधि दौलत और द्वारकापुरी मिल जाएगा कृष्ण कृष्ण बोलने से, मथुरा भले ही मिल जाए ब्रज नहीं मिलेगा, ब्रज में आना है तो राधे राधे बोलो। तो ओ पार्वती भी कहते आज मेरा जीवन सार्थक हुआ है, दीक्षा मिल गया मुझे, कृष्ण नाम और कृष्ण मंत्र अलग नहीं है। तो आज जोगिनी एकादशी, इस एकादशी में नियम है सारा दिन भगवान का नामों का जप होता है, कीर्तन होता है, उनका क्या करते हैं, केवल माला मंत्र लेके नहीं, जैसे 84 करोड़ यात्रा करते हैं, कोई गोवर्धन गिरिराज जी की यात्रा करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, मथुरा की परिक्रमा करते हैं, किससे बोलते नहीं हैं, मौनी अमावस्या की तरह बस 24 घंटा भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, बस अब चित्त भगवान में अपने आप जुगजुग तो हो गया, और याद भी नहीं, ध्यान भी नहीं, कौन है, कहाँ, मैं कहाँ हूँ, बस भगवत लीला, भगवत कीर्तन, भगवत रस से सराबोर हो जाता है, जीवन सार्थक हो जाता है। तो ये जोगिनी एकादशी के, और स्वयं भगवान खुद कहते हैं कि मैं सर्वधर्मान परिचिज्य माम एक शरण ब्रज, अहम ताम सर्वपापिभ्यो मोक्षेश्वर महासूच, तुम्हें शोक करने की दुख करने की कोई जरूरत नहीं, यदि मेरे शरण में आ गया तो मैं सब काम मैं करूँगा, मेरा जिम्मेदारी है। तो इस जोगिनी एकादशी में किसी ने भूले भटके भी भगवान धाम, भगवान नाम, भगवान के चिंतन किया, भगवान के शरणागत हुए, तो भगवान अपने आप ही उनका व्यवस्था बनाते हैं। तो आज बहुत रात हो गया, फिर हम लोग कल सुनेंगे अगले कथा, अब तो 9:30 हो गया। गौर प्रमाणे
जय जशोदानंदन कृष्ण गोपाल गोविंद
Jaya Madana Mohana Hare Ananta Mukunda Jaya Jashoda Nandana Krishna Gopala Govinda Jaya Achyuta Madhava Ram Vrindavana Chandra Vrindavana Chandra Jai Murali Vadana Shyam Gopi Jananda Jaya Jashoda Nandana Krishna Gopala Govinda Gopala Govinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare
Premsa goes Krishna Chaitanya Pravanitinanda, Shri Advaita Gurharsha, Sari Gauda Bhakta Vinaya Kijai, Shri Navari Dhamma, Dhamma Dhamma Jagat Pravi Dhamma Kijai, Dhamma Shri Shmada Varavana Kijai, Sajjana Gauda Hari Kijai, Liv Shaka Asa Kurenda Kijai, Yuguma Puramasa Devi Kijai, Gopisha Mahadevi Kijai, Nishina Shingne Bhagavan Kijai, Bhaktarasha Prahlad Maharaj Kijai, Charadam Characharya Sambhadar Kijai, Shri Yogini Mahakadashi Devi Kijai, Shri Harinam Sankitan Kijai, Ananda Koda Vaishnavinda ki jai, Dambasi Bhakti Vinda ki jai, Sambeda Bhakti Vinda ki jai, Nitai Gopemanande, Hari Hari.